नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उधर राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा बाधित होने से विद्यार्थियों और देश को गलत संदेश जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज भूस्खलन के कारण 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद करना पड़ा। वहीं डोडा जिले में मुख्य पुल पर दरारें दिखने की आशंका के बाद सुरक्षा जांच के लिए वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह उधमपुर जिले के देवल में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसके कारण अधिकारियों को दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराइदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमरीका और ईरान के सप्ताहांत में सैन्य हमले रुकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 47 सेंट प्रति बैरल पर थी। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।